निक जब जन्नत बाजार के पास पहुंचा, उसे पता चला कि जन्नत का डांस परफॉर्मेंस चल रहा था। वो अंदर जाने के बजाय वहीं बाहर बैठकर इधर उधर देखने लगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें इस हालात में देखूं। जब ये तमाशा खत्म हो जाएगा तब मैं अंदर चला जाऊंगा, निक ने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद अंदर से आ रही संगीत की आवाज बंद हो गई। निक समझ चुका था कि अब वहां नाच गाने के बजाय ग्राहक लड़कियों को छांट रहे होंगे। निक ने अपने कदम अंदर की ओर बढ़ाए। अंदर जाकर उसने देखा कि सुनहरी और रूपाली लड़कियों को अलग अलग आदमियों के साथ भेज रही थीं। वो सब देखकर चाहे जितना चाहे निक अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। वो सुनहरी को शूट करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी अंकित की नज़र निक पर पड़ी। वो जल्दी से उसे वहां से खींचकर पास के कमरे में ले गया। अंकित ने गुस्से में कहा, आर यू मैड? क्या करने जा रहे थे? अगर किसी ने देख लिया होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब, निक ने जवाब दिया। मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम वापस जा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है, हमें ये सब देखकर खुशी मिलती है? हमें सबको उतना ही गुस्सा आता है जितना तुम्हें आ रहा है, लेकिन जल्दबाजी में हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे ये बेचारी लड़कियां कभी यहां से निकल ही ना पाएं। निक ने उदास होकर कहा, ऐसा क्यों होता है कि किसी एक इंसान को इतनी अच्छी लाइफ मिलती है और वही दूसरा इंसान ऐसे हालातों में जीने पर मजबूर है? अंकित ने कहा, तेरी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि तुमने अपनी लाइफ में सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली हैंडल किए हैं और मैं चाहता हूं कि यहां से भी तुम इन सभी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकालो। पता है, पिछले 2 साल से हम प्लानिंग कर रहे हैं इस मिशन की, और अब जब हम इतने आगे पहुंच गए हैं, वहां तुम्हारी एक बेवकूफ़ी से सब कुछ खत्म हो सकता है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, कहते हुए निक अंकित के गले लग गया और पास आकर धीरे से कहा, जन्नत बाजार के मीटिंग रूम में फिल्म शूटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस कैमरा लगने बाकी हैं। ओ ग्रेट, इस बार इनकी मूवी फ्लॉप ही होगी, याद रखना कि आगे से ऐसी गलती ना हो। वो तो मैंने तुझे देख लिया, वरना तुम तो उसे गोली ही मार देते। आज नहीं तो किसी और दिन मैं ये काम जरूर करूंगा, निक ने अलग होकर कहा। सुनहरी और रूपाली से घुलने मिलने की कोशिश करो, अपनी बात कहकर अंकित वहां से चला गया। और जन्नत से भी, उसके जाने के बाद निक धीरे से बड़बड़ाया। जन्नत बाजार की हवेली की चहल पहल अब काफी हद तक कम हो चुकी थी। वहां मौजूद सभी आदमी एक एक लड़की को लेकर वहां से अलग अलग कमरों में जा चुके थे। निक भी वहां से बाहर की ओर बढ़ रहा था कि तभी जन्नत उसकी ओर भागकर रोते हुए आई। क्या हुआ, रो क्यों रही हो ऐसे, किसी ने कुछ किया तो नहीं? उसे रोता हुआ देखकर निक ने घबराते हुए पूछा। जन्नत बस रोती ही जा रही थी और निक के सामने हाथ जोड़ रही थी। निक ने कहा, देखो तुम जो बोलना चाहती हो बोल सकती हो, मैंने साइन लैंग्वेज सीख ली है, अब मैं तुम्हारे इशारों को पढ़ सकती हूँ, बोलो क्या कहना चाहती हो? जन्नत इशारे कर रही थी जबकि निक साथ साथ उसकी भाषा को समझते हुए बोल रहा था। वो फुलवा को ले गए, उसे बचा लो, आप उसे ले आओ, आप जो बोलोगे मैं करूँगी, पर उसे नहीं, वो बच्ची है। जन्नत की बात समझते ही निक के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। उसने उसे चुप कराते हुए पूछा, अच्छा ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि वो उसे कहाँ लेकर गए हैं? जन्नत ने उसे फिर इशारा करके बताया और लिखकर उसे पढ़ते हुए कहा, होटल ब्लू सनलाइट में, मैं देखता हूँ, पर किसी को मत बताना कि तुमने मुझे आकर ये सब बताया है। जन्नत ने उसकी बात पर हामी भरी और हाथ जोड़ते हुए उसके पैर छूने लगी। निक ने दूर होते हुए कहा, उठो तुम, ये क्या कर रही हो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर निक वहां से जाने लगा और उसने मुड़कर जन्नत को साइन लैंग्वेज में कहा, मेरी बात याद रखना। निक ने वहां से निकलकर मिस्टर मुखर्जी से बात की और इमरजेंसी टीम को रेडी करवाकर होटल ब्लू सनलाइट में रेट के लिए भेज दिया। निक होटल पहुंचा तब तक वहां पर रेट हो चुकी थी। वो दूर से खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। होटल के अंदर से काफी सारे आदमियों और लड़कियों को बाहर लाया जा रहा था। ओ गॉड, इस 1 घंटे में फुलवा के साथ कुछ गलत ना हुआ हो, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बेचारी बच्ची किन हालातों में जी रही है, वो तो अच्छा हुआ जन्नत ने मुझे आकर बता दिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। निक दूर खड़ा खुद से बात कर रहा था, तभी उसने फुलवा को बाहर आते देखा तो उसने राहत की सांस ली और कहा, थैंक गॉड ये ठीक है। निक वहां से हटा और उसने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। मिस्टर मुखर्जी भी कॉल पर उसके साथ ही जुड़े हुए थे। देखो बाकियों का मुझे नहीं पता, किसी एनजीओ से कॉन्टैक्ट कर लो, लेकिन वो जो छोटी बच्ची है मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ, उसे वहां पर पहुंचा दो। याद रहे वो बच्ची वापस जन्नत बाजार नहीं पहुंचनी चाहिए, निक ने कॉल पर कहा। उस पुलिस वाले ने कहा, देखिए सर आप जो भी हों, लेकिन आपको नहीं पता कि सुनहरी के कॉन्टैक्ट कहाँ तक हैं। इन लड़कियों को बाकायदा गिनकर वो वापस जन्नत बाजार में ले जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये पहली बार हुआ है जब किसी जगह पर जन्नत बाजार की लड़कियाँ पकड़ी गई हैं? पहले भी बहुत बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन इनके संपर्क ऊपर तक हैं। ये वापस सभी लड़कियों को वहीं पर ले जाएगी। मंत्री जी के छोटे भाई का कॉल भी मेरे पास आ चुका है, सुनहरी के साथ वो यहीं पर बैठे हैं।
वो पुलिस वाला बात कर रहा था कि तभी सुनहरी उसके पास आई और नोटों की एक गड्डी फेंकते हुए कहा, साले पैसे नहीं पहुंचे थे क्या तुम्हें तक? जो रेड मारती ले, मंत्री जी से बात कर और छोड़ मेरी लड़कियों को। आगे की बात वो लोग सुन पाते उससे पहले उस पुलिस वाले ने फोन काट दिया। देखा आपने सर, हर बार यही होता है, मिस्टर मुखर्जी ने निराश होकर कहा। हर बार होता होगा, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, मैं इन सबको यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगा, अपनी बात कहकर निक ने कॉल काट दिया। सुनहरी उन सभी लड़कियों के साथ जन्नत बाजार में वापस पहुंचती उससे पहले निक वहां पहुंच चुका था। निक के पहुंचने की थोड़ी देर बाद सुनहरी वहां लड़कियों के साथ आई। वो काफी गुस्से में लग रही थी। चलो जाओ सारी अपने कमरे में, साला आजकल तो दिन ही खराब चल रहे हैं, कभी कोई डील कैंसिल हो जाती है तो कभी कहीं रेट पड़ जाती है, गुस्से में सुनहरी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सभी लड़कियां डर के मारे अंदर चली गईं। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रूपाली बाहर आई। रूपाली ने कहा, चिल्ला क्यों रही है ताई, सारी की सारी लड़कियां वापस आ तो गई हैं, फिर काहे की टेंशन? हाँ, उस मंत्री के मुंह में पता नहीं कितने रुपए ठूसने पड़े तब जाकर ये सारी लड़कियां यहां पर आई हैं। सब कुछ जानती है फिर भी ऐसे पागलों वाले सवाल पूछती है तो और दिमाग खराब हो जाता है मेरा, सुनहरी ने गुस्से में जवाब दिया। मैं कह रही हूं ताई आपसे, आप ना हराने जाने वाले की आईडी लिया करो, पता नहीं उनमें से कोई पुलिस वाला या कोई जासूस निकले, सुनहरी ने कहा। अब तो फालतू का ज्ञान मत दे, मेरा ऐसे ही भेजा खिसका हुआ है, बस कल जिस डील के लिए जा रही हूँ वो कामयाब हो जाए, कुछ तो फायदा हो उससे। धीरे बोलता ही, सुना नहीं क्या, दीवारों के भी कान होते हैं, रूपाली ने धीरे से कहा। सुनहरी ने कहा, दीवारों के कान हो या आंगन के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सारे अपने ही हैं। अरे ताई भूल गई क्या, वो जो विदेश से साहब आए हैं मुझे यहीं पर रह रहे हैं, सुनहरी ने जवाब देते हुए कहा। वो अकेला क्या बिगाड़ लेगा, मत भूल वो भी हम में से ही एक है, तो उससे कैसा डरना, चल अब सोने जा, कल मैं भी बाबा से शुभ मुहूर्त पूछकर डील के लिए निकलूं।
अपनी बात करके सुनहरी और रूपाली वहां से सोने जा चुकी थीं। उनके जाते ही निक इधर उधर देखते हुए बाहर निकल कर आया। वो छिपकर उन दोनों की बात सुन रहा था। ओ तो चुपके चुपके डील की प्लानिंग की जा रही है, वैसे अच्छा ही है एक तरह से, ये सुनहरी यहाँ से कुछ दिनों के लिए जाए तो यहाँ के कई राज खुल सकते हैं। रूपाली तो बहुत आसानी से अपना मुंह खोल देगी, थोड़े से पैसे देखते ही अपने आप लाइन पर आ जाएगी, इसी बहाने जन्नत का भी पता चल जाएगा कि वो प्रियल है या नहीं, निक ने अपने मन में सोचा। निक वहां से ऊपर गया और वहां जाकर उसने रॉन को कॉल किया। रॉन ने फोन उठाते ही कहा, हाँ निक, तेरी रेट का तो कुछ फायदा नहीं हुआ, सॉरी फॉर दैट, निक ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। वो तो मुझे पहले ही पता था कि मेरी रेट का कोई फायदा नहीं होगा, अगर इनको पकड़ना इतना ही आसान होता तो अब तक ये लोग पकड़े जा चुके होते, लेकिन रेड जिस मकसद से की गई थी वो ज़रूर सक्सेसफुल हुआ, एक छोटी बच्ची को बचाना था बस, वो बच गई है। खैर इन सबको छोड़ो, सुनहरी कहीं घूमने के लिए जा रही है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस ट्रिप पर उसके हमसफ़र रहो। रॉन ने कहा, हाँ ठीक है, तुम उसके जाने के कुछ टाइम पहले मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूँगा। निक ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं रखता हूँ। निक फोन पर बात करके सोने जा ही रहा था कि अचानक से फुलवा का हाथ पकड़कर जन्नत वहां पर आई। एक पल के लिए निक को लगा कि उन दोनों ने उसकी सारी बात सुन ली होगी। तुम दोनों यहाँ कब से हो, उसने खुद को सामान्य करते हुए पूछा। बस अभी आए हैं, फुलवा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसके जवाब से निक ने राहत की सांस ली। निक ने फुलवा के पास आकर पूछा, तुम ठीक तो हो ना, कहीं कुछ नहीं? आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, आप ही हमें बचाने के लिए आए थे ना, दीदी ने बताया हमें, निक ने जन्नत की तरफ देखकर उसे डांटते हुए कहा। मैंने मना किया था ना तुम्हें किसी को भी कुछ बताने से, पर तुम हो कि जब तक सबको थोड़ा थोड़ा करके नहीं बता देती तब तक तुम्हें सुकून कहाँ मिलता है। जन्नत ने निक की ओर सवालिया नजरों से देखा, उसने इशारों में कुछ कहा जिसे ट्रांसलेट करते हुए फुलवा ने कहा, भैया आप क्या बोल रहे हो, दीदी को कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं, मैं किसी और के बारे में बात कर रहा था। फुलवा तुम इसके बाद ट्रांसलेट करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब समझ आता है, निक ने उदास होकर कहा। फुलवा ने कहा, इतनी जल्दी आप सीख भी गए, आप इस गंदी जगह पर क्या कर रहे हो भैया, ये जगह आपके लिए सही नहीं है, क्या आप भी और लोगों की तरह बुरे हैं जो हमें विदेशों में ले जाकर बेच दोगे? पता नहीं, निक ने बस इतना ही कहा और वहां से चला गया। जन्नत और फुलवा उसे दूर तक जाते हुए देख रही थी, उन दोनों को ही उसकी बात समझ नहीं आई। उसके जाने के बाद जन्नत ने फुलवा को फिर से गले लगा लिया, जहां फुलवा खुद को काफी सुरक्षित महसूस कर रही थी।